दिन भर तारीख 24 फरवरी दिन शुक्रवार। मैं हूं मोहन लाल शर्मा। मलेशिया की पुलिस के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की हत्या में इस्तेमाल हुआ था बेहद जहरीला रसायन VX।
केमिकल तो सुधा समस्ती दिहरामकान करना ये अदला जिनिस केमिकल।
बीजेपी और शिवसेना के बीच BMC के मेयर पद पर हो रही है खींचतान। विवेचना में चंदन तस्कर वीरप्पन के उदय और अंत की कहानी।
Very little breathing was there. I could see that he was struggling. Only two bullets had hit him. One bullet was in the face and it must have hit the nerve in the back. So when sensitive parts are hit, life will be normally switched off very fast.
लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार संदीप सोनी से। मलेशिया में पुलिस का कहना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके सौतेले भाई किम जोंग नम की कुआलालंपुर में हत्या में एक बेहद जहरीले रसायन का इस्तेमाल किया गया था। इसे VX नर्व एजेंट के नाम से जाना जाता है। ये इतना जहरीला होता है कि अपने संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की जान तक ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक VX नर्व एजेंट सामूहिक हत्या करने वाला एक रासायनिक हथियार है। सीरिया के अलबाब कस्बे के नज़दीक एक आत्मघाती हमले में लगभग 60 लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक आत्मघाती हमलावर कार में सवार था जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। धमाके में मारे गए अधिकतर लोग आम नागरिक थे। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब एक दिन पहले ही तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने कई महीने तक चली लड़ाई के बाद इलाके को इस्लामिक स्टेट से छुड़ाया है। भारत में सेंसर बोर्ड ने लिपस्टिक अंडर माय बुर्का नामक एक फिल्म को मंजूरी देने से मना कर दिया है। प्रकाश झा की इस फिल्म में चार महिलाओं की निजी जिंदगी दिखाई गई है। फिल्म के निर्देशक अलंकृत श्रीवास्तव ने इसे महिलाओं के अधिकारों पर हमला बताया है, जबकि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने अपने फैसले का बचाव किया है।
शोकास नोटिस दे दिया प्रोड्यूसर्स को, आप लोगों को प्रोसेस नहीं पता है इसलिए इतने हंगामा क्रिएट कर रहे हो। इसमें ना कोई कंट्रोवर्सी है ना कोई है, प्रोड्यूसर को माइलेज चाहिए। आप लीजिए जो प्रोड्यूसर का है उसमें रिकॉर्ड कर दीजिए और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना।
ये थे सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इराक में सरकारी सुरक्षा बल मूसल शहर के पश्चिमी हिस्से में दाखिल हो गए हैं, जहां फिलहाल खुद को इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी बताने वाले लड़ाकों ने कब्जा कर रखा है। ये जगह इराक में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों का आखिरी गढ़ माना जाता है। इराकी सेना के साथ मौजूद BBC संवाददाता का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने मजबूत रक्षा पंक्ति बना रखी है जिसे भेदने के लिए सेना ने बुलडोजर और अन्य भारी वाहनों का इस्तेमाल किया है। जापान में कामगारों ने आज देश के पहले प्रीमियम फ्राइडे का जमकर लुत्फ उठाया है। प्रीमियम फ्राइडे जापान की सरकार की एक कोशिश है जिसके तहत देश के सभी दफ्तरों को हर महीने की आखिरी शुक्रवार को जल्द बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जापान को इस मामले में बदनाम माना जाता है कि देश में काम के घंटे बड़े लंबे हैं, जिसका बुरा असर कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
毎月末、金曜日、最終金曜日には、3時に仕事を辞めて、そして楽しく、自分磨きと。
ユルク・コイコ नामक एक कर्मचारी कह रही थी कि इस योजना से हमें दफ्तर 3 बजे तक छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि हम अपने और अपने दोस्तों के लिए समय निकाल सकें। मुझे लगता है कि इससे लोगों के काम करने के तरीके में बदलाव जरूर आएगा। ये थे जापान में एक कर्मचारी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। बांग्लादेश में हिफाजत इस्लाम नामक एक कट्टरवादी इस्लामी समूह के हजारों समर्थकों ने आज राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन किया है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर पिछले साल लगाई गई उस प्रतिमा को हटाने की मांग कर रहे हैं जिसमें एक महिला को स्थानीय कपड़ों में यूनान की न्याय की देवी की तरह दिखाया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये प्रतिमा इस्लाम के विरुद्ध है। अमेरिका के कैंसस राज्य में एक रेस्तरां में एक हमलावर ने दो भारतीय समेत 3 लोगों पर गोलियां चलाई हैं जिसमें भारत के एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास के तौर पर हुई है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस घटना पर चिंता जताते हुए मृतक भारतीय के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीका में स्थानीय मीडिया ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से इसे नस्ली हमला बताया है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई हत्या में एक बेहद जहरीले रसायन VX9 एजेंट के इस्तेमाल की बात सामने आई है। किम जोंग नम 13 फरवरी को कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर जब फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे तो दो महिलाओं ने उनके चेहरे पर कुछ पोत दिया था। हवाई अड्डे से अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। मलेशिया में की गई जांच के परिणामों के मुताबिक नम पर हुए हमले में VX9 एजेंट का इस्तेमाल किया गया था। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए दिव्या आर्य से।
मलेशिया पुलिस के मुताबिक VX9 एजेंट ऐसा हथियार है जिसको सूंघा नहीं जा सकता, पर यह बहुत विषैला है। पुलिस को इसके निशान किम जोंग नम के चेहरे पर मिले। मलेशियन पुलिस के खालिद अबू बकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,
kita kan saya salah dan kimia tu jumlah kalau dimasuk dalam jumlah yang kecil,
अगर केमिकल की मात्रा कम होगी तो हमारे लिए उसे ढूंढ पाना मुश्किल होगा। ये केमिकल गैर कानूनी है, ये एक रासायनिक हथियार है। हम जांच कर रहे हैं कि ये देश में कैसे लाया गया।
खालिद अबू बकर के शब्द। शंका जताई जा रही है कि किम जोंग अन पर इस हमले के लिए उत्तर कोरिया जिम्मेदार है। हालांकि उत्तर कोरिया ने इससे साफ तौर पर इनकार किया है और मलेशिया पर गलत इरादे होने का आरोप लगाया है। पिछले हफ्ते कुआलालंपुर को उत्तर कोरिया के राजदूत कांग चोल ने पत्रकारों से कहा था कि वो मलेशिया की जांच पर विश्वास नहीं करते हैं। मलेशिया के विदेश मंत्री अनीफा अमन ने इसे खारिज करते हुए एक पत्रकार वार्ता की और कहा,
We do not see the need to dignify his statements and accusations against the government of Malaysia.
मलेशिया सरकार के खिलाफ लगाए उनके आरोप और वक्तव्य को इज्जत देने की हम कोई जरूरत नहीं समझते। पूरी दुनिया ये जानती है कि ये जांच तथ्यों के आधार पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई है। राजदूत को पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है, पर वो फिर भी झूठे दावे कर रहे हैं, हमारी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं।
मलेशिया के विदेश मंत्री अनीफा अमन के शब्द। वहीं कुआलालंपुर में दूतावास के सामने पत्रकारों से बातचीत में उत्तर कोरिया के एक राजनयिक किम यू संग ने ताजा घटनाक्रम पर बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने यही दोहराया कि मलेशियाई अधिकारी उनसे सहयोग की मांग तो कर रहे हैं, पर उन्हें अब तक उनसे कोई दस्तावेज नहीं मिले।
हमें मलेशिया के विदेश मंत्रालय और पुलिस से कोई जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं, बल्कि दक्षिण कोरिया के अखबार हंक्योरे ने यह छापा है कि दूतावास को दस्तावेज मिल गए हैं। हम इसका विरोध करते हैं और इसे सही करने की मांग करते हैं।
उत्तर कोरिया के राजनयिक किम यू संग के शब्द। उत्तर कोरिया उन 6 देशों में से एक है जिन्होंने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन आर्म कंट्रोल ट्रीटी यानी रासायनिक हथियारों पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस समझौते के तहत केमिकल हथियारों के उत्पाद, उनका जखीरा बनाना और इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के मुताबिक अमेरिका और रूस के बाद उत्तर कोरिया के पास केमिकल हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा जखीरा है। विश्लेषक जॉन ली विल्सन सेंटर में ग्लोबल फेलो हैं। उनके मुताबिक ये मुमकिन है कि उत्तर कोरिया VX नर्व गैस का उत्पादन करता हो।
उत्तर कोरिया कहता रहा है कि उसके पास रासायनिक हथियार नहीं है। वहीं दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के रक्षा क्षेत्र में शोध के आधार पर उसे रासायनिक हथियार बनाने वाला देश घोषित किया है। जब मैं उत्तर कोरिया में थी तो उनकी सैन्य परेड में देखा था कि सैनिकों के कंधों पर लदे बैग पर रासायनिक खतरे के निशान बने हुए थे।
विश्लेषक जॉन ली के शब्द। उत्तर कोरिया ने कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर मारे गए व्यक्ति को सिर्फ अपना नागरिक बताया है। अब तक उसकी पहचान किम जोंग नम के तौर पर नहीं की है। उत्तर कोरिया के दिवंगत नेता किम जोंग इल के सबसे बड़े बेटे किम जोंग नम को एक वक्त उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था, पर उनके सौतेले भाई किम जोंग अन को ये मौका मिला। कई भाषाओं में पारंगत किम जोंग नम कई साल तक विदेश में रहे थे।
दरअसल VX का रासायनिक नाम मिथाइल फॉस्फोनोथायोएट है। अब सवाल यह है कि ये VX9 एजेंट है क्या चीज और किस तरह का रसायन है, किस तरह से काम करता है। और जानकारी के साथ है हमारे सहयोगी भरत शर्मा।
मोहनलाल जी, VX9 एजेंट को संयुक्त राष्ट्र ने सामूहिक हत्या करने वाला रासायनिक हथियार बताया है। ये सबसे ज्यादा जहरीला रासायनिक हथियार बताया जाता है। ये रंगहीन है और गंधहीन भी है।
इसका इस्तेमाल कैसे होता है, मतलब ये काम करता कैसे है?
दरअसल ये त्वचा के अंदर जाकर तंत्रिकाओं के जरिए संदेश भेजने को रोक देता है। त्वचा पर पड़ने वाली इसकी एक भी बूंद जान ले सकती है। इसकी एक छोटी खुराक से आंखों में तेज दर्द, धुंधला दिखना, सुस्ती और उल्टी की समस्या आ सकती है।
इसे कैसे फैलाया जा सकता है?
इसे स्प्रे करके या भाप जैसा बनाकर फैलाया जा सकता है। इसे खाने पीने के पानी या कृषि उत्पादों में मिलाकर भी जहरीला बनाया जा सकता है।
किस तरह से ये जहरीला पदार्थ शरीर में पहुंचता है?
ये सांस, त्वचा के संपर्क में आकर या आंखों के जरिए शरीर में पहुंच सकता है। भाप के संपर्क में आकर VX करीब आधे घंटे तक कपड़ों में रह सकता है। इस तरह ये और लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है।
क्या दुनिया में इस रसायन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है?
बिल्कुल, 1993 में हुई केमिकल वेपन कन्वेंशन के जरिए VX के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी।
ये थे भरत शर्मा। तो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके सौतेले भाई किम जोंग नम की कुआलालंपुर में हुई हत्या में एक बेहद जहरीले रसायन VX नव एजेंट के इस्तेमाल की बात सामने आई है।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। वृहन मुंबई नगर निगम यानी कि BMC के चुनाव परिणामों में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी जरूर, लेकिन वो बहुमत से दूर रही। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। BJP को 82 जबकि शिवसेना को 84 सीटें मिली। तो मेयर किसका होगा, कौन किसको समर्थन देगा? शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा काहिंदे ने कहा,
माननीय उद्धव जी ठाकरे इन्होंने स्वयं कहा है कि मेयर शिवसेना का ही होगा और आगे की रणनीति तय करेंगे माननीय उद्धव जी। जिस प्रकार से हम शिवसैनिकों को आदेश आएगा उस प्रकार से हम आगे काम करेंगे।
ये थी शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा काहिंदे। सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं मुंबई से स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर को। अश्विन, तो सबसे पहले तो खींचातान मची हुई है इस BMC के मेयर पद को लेकर, और इस तरह की भी कुछ खबरें आई कि शायद कांग्रेस शिवसेना को समर्थन कर दे।
जी, जब से ये नगर निगम के नतीजे आए हैं और किसी को बहुमत न मिलने की स्थिति पैदा हो गई है, उसके बाद मुंबई में राजनीतिक गहमागहमी काफी बड़ी है। और इस सबके चलते अब सबसे अहम सवाल ये है कि सत्ता किसकी बनेगी और मेयर किसका होगा। इस बीच कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन देने के संकेत दिए हैं और कांग्रेस के कई नेता जैसे अशोक चव्हाण है, नारायण राणे हैं, इन्होंने भी ये संकेत दिए हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जो भी अंतिम फैसला होगा वो हाईकमान करेगी। लेकिन अशोक चव्हाण ने जब ये संकेत दिए है कि वो शिवसेना का समर्थन कर सकती है, तो उसमें उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर यदि कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं तो शिवसेना को पहले सरकार से इस्तीफा देकर बाहर आना होगा।
अच्छा, और हाँ
जी जी,
तो क्या इस तरह की भी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जुड़ जाएं?
जी, संभावना सबसे ज्यादा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ही अंत में गठबंधन हो, क्योंकि किसी अन्य पार्टी से गठबंधन समर्थन लेना शिवसेना के लिए भी आने वाले दिनों के लिए या फ्यूचर में ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा, फिर बल्कि नुकसान ही ज्यादा होगा।
कल कुछ बैठकें भी होनी है।
हाँ जी, बैठक तो शिवसेना की तो आज देर रात होने वाली है और भाजपा की कल दोपहर होगी, तो उसमें से ये तय किया जाएगा कि किसका समर्थन ले या आगे जो भी रणनीति होगी गठबंधन की, उस पर निर्णय इन बैठकों में हो जाएगा। शिवसेना आज तय करेगी, भाजपा कल तय करेगी।
तो यानी कि दोनों दल अपनी अपनी रणनीति तय करेंगे और दरवाजे अभी खुले हुए हैं और अभी ये तय नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे साफ साफ कह रहे हैं कि उनका ही मेयर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन अघोर आपका इस कार्यक्रम में सीधे शामिल होने के लिए। और अब हम आपको बताते हैं कि कल क्या है BBC इंडिया बोल का विषय।
BBC इंडिया बोल।
भारतीय विश्वविद्यालय वामपंथ और दक्षिण पंथ की लड़ाई का अड्डा क्यों बन रहे हैं? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसक झड़प इस ओर इशारा नहीं करती? यही है इस बार BBC इंडिया बोल में चर्चा का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इस शनिवार 25 फरवरी को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो हमें BBC इंडिया बोल में आपके फोन का इंतजार रहेगा। और अब कार्यक्रम में वक्त है विवेचना का। चाहे उसकी लंबी लंबी हैंडल बार मूछें हों या उसका दो दो राज्यों की पुलिस को 20 सालों तक लगातार चैन से न बैठने देना हो, लोग अभी भी चंदन तस्कर वीरप्पन को भूल नहीं पाए हैं। वीरप्पन पर 2000 से अधिक हाथियों और 184 लोगों को मारने का आरोप था। हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विजय कुमार की किताब प्रकाशित हुई है, वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगांड, जिनमें उन्होंने वीरप्पन के बचपन से लेकर डाकू बनने और उनके अंत की कहानी को बड़े दिलचस्प ढंग से बयां किया है। आज की विवेचना में रेहान फजल बता रहे हैं वीरप्पन के उदय और अंत की कहानी।
ये आवाज है कूसे मुनिया स्वामी वीरप्पन की, जो एक जमाने में भारत का मोस्ट वांटेड मैन हुआ करता था। उसने 20 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया, जिस पर 2000 से अधिक हाथियों और करीब 184 लोगों को जान से मारने का आरोप था और जिसके सिर पर 5 करोड़ रुपए से ऊपर का इनाम रखा गया था। भारतीय अपराध जगत में दाऊद इब्राहिम को छोड़कर इतना बड़ा इनाम किसी के सिर पर नहीं रखा गया। 18 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि उसने 17 साल की उम्र में पहली बार एक हाथी का शिकार किया था। हाथी को मारने की उसकी फेवरेट तकनीक होती थी उसके माथे के बीचों बीच गोली मारना। वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगांड के लेखक और वीरप्पन को मारने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख के विजय कुमार बताते हैं।
इनका पास टैलेंट भी था और स्किल भी था। वहाँ कई लोगों के पास बंदूक बहुत नॉर्मल चीज़ है, जस्ट लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में दिस इज नॉर्मल थिंग। एज अ बॉय ही वॉज वेरी गुड शार्प शूटर। सो धीरे धीरे एक जेवी काउंटर एक आदमी थे, वो आइवरी डीलर थे, उन्होंने अपना कंट्रोल में इनको लिया है। हाथी का ट्रंक है ना, वो दैट इज यूज एज अ नोज टू स्मेल। हाथी विल पुट द ट्रंक पीछे और आगे टू स्मेल द ह्यूमन बींग। सो ही विल वॉच द विंड डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंगली गो वेरी क्लोज एंड शूट। ही वॉज अ वेरी स्किल्ड शूटर एंड दैट ही कंटिन्यू टिल द एंड। सारे एम्बुश में बहुत अच्छी तरह प्लान करते थे। शुरू में उनके पास केवल वो बर्मर टाइप का मजल लोडर और ऑर्डनरी वेपन्स थे उनके पास, हमारा पास SLR और 303 पुलिस के पास। फिर भी वो बैकवर्ड और इतना प्रिमिटिव वेपन के साथ उनका एम्बुश बहुत इफेक्टिव था।
वीरप्पन की खूंखारियत का आलम यह था कि एक बार उसने भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी पी श्रीनिवास का सिर काट कर उससे अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेली थी।
श्रीनिवास बहुत फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, IFS का गोल्ड मेडलिस्ट थे। हर एक हंट में जाते थे, केवल रेड का डिपेंड नहीं किया इन्होंने, वहाँ जाके एक हॉस्पिटल खोला। सो इसमें बहुत पब्लिक का गुडविल इन्होंने कमाया। वीरप्पन इसको देख के डर गया। उस जमाने में उस वक्त उसी महीने में एक बहुत बड़ा रेड भी इन्होंने किया, करीब 1 टन का पूरा सैंडलवुड चंदन इन्होंने पकड़ा और उसमें 20 से 25 लोग इन्होंने अरेस्ट किया। इसके बाद में कीर्ति चक्र भी मिला इन्होंने। वीरप्पन का ब्रदर है एक अर्जुनन, उनको कल्टिवेट करके उनको समझाया कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहिए। वीरप्पन ने कहा मैं भी सरेंडर कर दूंगा। इन्होंने मान लिया, पूरा बिलीव करके इन्होंने एक पर्टिकुलर जहां मीट करने के लिए जा रहे थे। धीरे धीरे हर एक 10-15 मीटर में एक एक आदमी ड्रॉप करके पीछे चले गया। फाइनली केवल एक विलेज का लीडर हेडमैन था इनके साथ, वो भी अचानक एक पूल पॉन्ड के नीचे नज़दीक आके वहाँ वो ड्रॉप कर दिया। फाइनली केवल श्रीनिवास रह गया। फिर ये पूरा लोग वो बुश के बाहर आके इनको ये कर दिया। उनका फ्रेंड एक शंकर बिद्री जो बाद में STF का लीडर थे, वो हेड को 1-2 साल के बाद वो हेड को वो डिटेक्ट किया। इट्स वेरी ब्रूटल मर्डर इट वॉज। द विटनेसेस वेर सेइंग दैट दे वर प्लेइंग लाइक फुटबॉल के तरफ, वो दे वर किकिंग इट अराउंड।
आपने क्रूरता के बहुत से उदाहरण सुने होंगे, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि किसी लुटेरे या डाकू ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी की बलि चढ़ा दी हो, उसके रोने की आवाज से उसके ठिकाने का पता न चल जाए। वीरप्पन ने कुछ महीनों की अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया।
उसमें केवल वीरप्पन का वाइफ मना किया, वो बहुत अफेक्टेड थे इस इंसिडेंट में। जब बच्चे रोते हैं वो अंग्रेज में कहते हैं वो साउंड का डेसिबल, ये करीब 110 का डेसिबल है। थंडर क्लैप इज 120, केवल इससे 10 डेसिबल ज़्यादा। आप सोच सकते हैं कि ये जंगल के अंदर अगर बच्चे का 110 डेसिबल का आवाज़ करीब 2-3 किलोमीटर तक एको कर सकते हैं। सो उस वक्त हमारा एक बहुत फेमस ऑफिसर थे संजय अरोरा, STF का तमिलनाडु STF, पीछे ये तो इनके साथ करीब 100 आदमी थे, औरतों भी थे, बच्चे भी थे और बाकी लोग भी, नौजवान भी थे और बुजुर्गों भी थे। ये इतना बड़ा मुगल आर्मी जैसे उतना टेल के साथ वो जा रहे थे, इसलिए इनका थोड़ा डर रह गया कि अगर ये टाइप का बच्चे का बिहेवियर हो गया तो, क्योंकि पता नहीं सकता कब बच्चे रोने वाला है, कोई अलार्म को कोई एडवांस नोटिस नहीं मिलेगा। اس لیے انہوں نے ایک بار یہ ہو گیا تھا, لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے باقی لوگ, سو ویرپن نے آدیش دیا ایک مڈ وائف مطلب ایک چنا پلے کر کے ایک مڈ وائف مطلب جو پہلے ان کا ڈلیوری وغیرہ مدد کیا وہ ان کی طرف دے کے انہوں نے اشارہ دیا. سو ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں تھا, سو دس ہیپن. یہ آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ باقی انڈیا میں بھی کہیں جہاں میں ہم نے انفینٹیسائڈ کے بارے میں سنا ہے, لیکن یہ انسیڈنٹ پیورلی ٹیکٹیکل ڈیسیشن انہوں نے کیا, اپنا بیبی کو بھی سیکریفائی کرنے تیار ہے جسٹ ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف.
ویرپن راشٹریہ استر پر کخیات ہوا جب اس نے 1993 میں گڈ فرائیڈے کے دن ایک پولیس دل پر گھات لگا کر حملہ کر 21 پولیس کرمیوں کو مار ڈالا. اس پولیس دل کے ایک سدسیہ اشوک کمار بتاتے ہیں.
ریمبو گوپال کرشنن کے دل کو نشانہ بنانے کے لیے ویرپن نے سڑک پر 10-10 فٹ کی دوری پر 14 گڈھے کھود رکھے تھے. ان گڈھوں میں وسفوٹک رکھے ہوئے تھے جن کو 12 بولٹ کی کار بیٹری سے جوڑا گیا تھا. جیسے ہی وسفوٹ ہوا بس کے نیچے کی زمین دہلی, 3000 ڈگری سیلسیس کا تاپمان پیدا ہوا. آگے جا رہی بس ہوا میں اچھلی اور پتھروں, دھاتو اور کٹے پھٹے مانس کے لوتھڑوں کا ملبہ 1000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے زمین پر آ گرا. درشیہ اتنا بھیانک تھا کہ دور چٹان کی آڑ میں بیٹھا ویرپن بھی کانپنے لگا اور اس کا پورا شریر پسینے سے سرابور ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جب میں وہاں پہنچا تو میں نے 21 کشت وکشت شووں کو گنا. ہم نے شووں اور گھائلوں کو پیچھے آ رہی بس میں رکھا, لیکن اس بدحواسی میں ہم اپنے ایک ساتھی سگمار کو وہیں چھوڑ آئے کیونکہ وہ چھٹک کر کچھ دوری پر جا گرا تھا. اس کا پتہ تب چلا جب بس وہاں سے جا چکی تھی. کچھ ہی دیر میں اس نے دم توڑ دیا.
سن 2000 میں ویرپن نے دکشن بھارت کے مشہور ابھینیتا راج کمار کا اپہرن کر لیا. 100 سے ادھک دنوں تک راج کمار ویرپن کے چنگل میں رہے. اس دوران اس نے کرناٹک اور تمل ناڈو دونوں راجیہ سرکاروں کو گھٹنوں پر لا دیا. کرناٹک کے تتکالین مکھیہ منتری ایس ایم کرشنا بولے,
ویرپن ہیز سیڈ دیٹ وی شوڈ گو ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فار سیٹلنگ کاویری ڈسپیوٹ, وی ہیو سیڈ نو. ویرپن سیڈ دیٹ تامل شوڈ بی دی سیکنڈ لینگویج آف کرناٹک, وی ہیو سیڈ نو.
جون 2001 دن میں 11 بجے ورشٹھ آئی پی ایس ادھیکاری کے وجے کمار کے موبائل کی گھنٹی بجی. اسکرین پر فلیش ہوا اما. انہوں نے جے للیتا کے فون کو اما کے نام سے فیڈ کر رکھا تھا. جے للیتا سیدھے پوائنٹ پر آئیں.
ہم آپ کو تمل ناڈو اسپیشل ٹاسک فورس کا پرمکھ بنا رہے ہیں. اس چندن تسکر کی سمسیا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. آپ کو آپ کے آرڈرز کل تک مل جائیں گے.
ایس ٹی ایف کا پرمکھ بنتے ہی کے وجے کمار نے ویرپن کے بارے میں خفیہ جانکاری جمع کرنا شروع کر دیا. پتا چلا کہ ویرپن کی آنکھ میں تکلیف ہے. اپنی مونچھوں میں رنگ لگاتے سمے اس کی کچھ بوندیں چھٹک کر ویرپن کی آنکھ میں جا گری تھی.
ویرپن واز ویری فونڈ آف سینڈنگ آڈیو ٹیپس اور ویژول ٹیپس. ایک بار انہوں نے 9 گھنٹے کا انٹرویو بھی دیا ٹی وی کو. بیچ میں کئی بار انہوں نے آڈیو ٹیپس گورنمنٹ آفیسر کے لیے اور اپنا فیملی کے لیے وہ ٹائپ کا عادت ان کے پاس تھا. اس ایک ٹیپ کا اندر آڈیو ویژول ٹیپ میں وہ کچھ پڑھنے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا, لیکن ہمیں لگ رہا تھا تھوڑا ہائس میں اسٹرین ہے.
ویرپن کے لیے جال بچھایا گیا کہ اس کو آنکھ کے علاج کے لیے جنگل سے باہر لایا جائے گا. اس کے لیے خاص ایمبولینس کا انتظام کیا گیا جس پر لکھا تھا ایس کے ایس ہاسپٹل سیلم. اس ایمبولنس میں ایس ٹی ایف کے 2 لوگ پہلے سے ہی بیٹھے تھے, انسپیکٹر ویلئی دورئی اور ڈرائیور سرونن. ویرپن نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور پہچانے جانے سے بچنے کے لیے اس نے اپنی مشہور ہینڈل بار مونچھیں چھوٹی کر رکھی تھیں. پور نردھارت استھان پر ڈرائیور سرونن نے اتنی زور سے بریک لگایا کہ ایمبولنس میں بیٹھے سبھی لوگ اپنی جگہ سے گر گئے.
بہت اسپیڈ سے آ رہے تھے, اچانک بریک مارا. تب میرے پاس وہاں سے دعا آیا, وہاں سے اسموک اینڈ اسمیل واز کمنگ فرام دی ٹائر. وہ جیسے ایئر کرافٹ کا ہوتا ہے نا, وہ ٹائپ کا تھا. جہاں پہ ہمارا پارکنگ لاٹ ہم نے مارک کیے تھے ایگزیکٹلی دیر, ایک یارڈ کا بھی فرق نہیں تھا. انہوں نے 3 لائٹ کو بھی آن کر دیا, لیکن وہ لائٹ بھی بند کرنا تھا اوپر والا, اور فاگ لیمپ وہ بھول گیا تھا. مطلب وہ ٹینشن میں وہ نیچے آ گیا تھا. ہی کیم رننگ ٹو می, دورائی جمپڈ آؤٹ. دیٹ 2 seconds was the most important of my decision. اگر وارننگ کرنے کا پہلے اگر 1 second کا بھی غلطی ہو گیا, ہم آپ سوچ لیجیے 30 آدمی کا گنس ان کے اوپر ہے. ہمارا گن کا اسپیڈ آپ جانتے ہوں گے کہ 600 rounds per minute, مطلب ہر 1 second کا 10 round. ایک اگر مان لیجیے اگر 30 آدمی میں کیول 10 آدمی اوپن کر لیا, 10 into 10 in 1 second, 100 rounds in 1 second, ویری ڈینجرس. Luckily, that was perfect.
रुकते ही ड्राइवर और वेल्लई दुरई बाहर भागे। मेगाफोन पर आवाज गूंजी, वीरप्पन तुम चारों तरफ से घिर चुके हो।
वार्निंग के बाद फर्स्ट फायर केम फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम इनसाइड, गाड़ी के पीछे तरफ से, और बाद में हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है कैसा क्या किसने किया होगा, क्योंकि वीरप्पन का पोजीशन फेसिंग द ड्राइवर टुवर्ड दैट साइड, दिस लास्ट सीट वाज साइड सीट फेसिंग द साइड, सो फर्स्ट राउंड केम फ्रॉम हियर एंड द साउंड ऑफ द राउंड वाज समथिंग लाइक AK-47, सो इन रिकंस्ट्रक्शन इट लुक्स लाइक गोविंदन का फायर था पहले, उसके बाद फिर हमने दोबारा वार्निंग किया, फिर शुरू कर दिया। टोटल पीरियड इज नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स, इसलिए मैंने कहा 20 साल का हंट 20 मिनट का अंदर कम्प्लीटली खत्म हो गया।
कुल 338 राउंड चलाए गए। आश्चर्य की बात है कि वीरप्पन को इनमें से सिर्फ 2 गोलियां ही लगी। 60 के दशक में जब फ्रांस के राष्ट्रपति द गाल की कार पर 140 गोलियां बरसाई गई थी तो उनमें से सिर्फ 7 ही उनकी कार पर लगी थी। मैंने विजय कुमार से पूछा कि गोलीबारी के बाद जब आप एम्बुलेंस में घुसे तो क्या वीरप्पन जिंदा था?
तो वेरी लिटिल ब्रीथिंग वाज देयर, आई कुड सी दैट ही वाज स्ट्रगलिंग। उनको ओनली 2 बुलेट्स हैड हिट हिम, 1 बुलेट वाज इन द फेस एंड इट मस्ट हैव हिट द नर्व इन द बैक व्हिच कनेक्ट्स टू द ऑप्टिक नर्व और समथिंग, सो इन सेंसिटिव पार्ट्स आर हिट लाइफ विल बी नॉर्मली स्विच्ड ऑफ वेरी फास्ट। ही हैड वेरी लिटिल लाइफ आई थिंक सो, बट वी स्टिल सेंड हिम टू द हॉस्पिटल।
इसके बाद एसटीएफ का पूरा दल एक तरह से सकते में आ गया। ये सिंक इन होने में थोड़ा वक्त लगा कि उन्होंने वीरप्पन को खत्म कर दिया है। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ, विजय कुमार को उनके दल ने कंधों पर उठा लिया। इसके बाद कानन और दुराई को भी कंधों पर उठाकर उछाला गया। विजय कुमार तेज कदमों से स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर छज्जे पर जा पहुंचे। वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री जयललिता को फोन लगाया। उनकी सचिव शीला बालाकृष्णन ने फोन उठाया, बोली मैडम तो सोने के लिए चली गई हैं। विजय कुमार ने कहा मैं जो उनको बताऊंगा उसे सुनकर वो खुश होंगी।
I jumped, ran double steps at a time. Actually, my leg was a little cramped because I was sitting in the same position. I've got this muscular proneness to thoda muscular cramps type ka. Us waqt bhi maine thoda uske saath maine utke wahan andar gaadi ke nazdeek jaake unko dekha hai. Unko bahar lene ke baad wo niche zameen mein the. Maine kaha jaldi inko kar do. Lekin unka mooch shave karke thoda shave matlab ekdam nahi thoda sa trim karke bahut chota. The main part of Veerappan is his mustache. It's like a cobra's hood. Wood of a cobra, the main identity is that big thing. So without that, he was looking very ordinary. But after the thing was removal, I ran up the steps. I sat down on the parapet with my feet towards the road, watching the vehicle cocoon. Then I made the call.
Aur kya pehla shabd aapne kya kaha?
Madam, we got him. She never asked whether he is alive, dead, no description. She asked, what is the safety of your man? Are your men safe? I said everybody is safe.
फोन काटने के बाद विजय कुमार अपनी जीप की तरफ बढ़े। उन्होंने एम्बुलेंस पर आखिरी नजर डाली। उसकी छत पर लगी नीली बत्ती अभी भी घूम रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि उस पर एक भी गोली नहीं लगी थी। अंततः उसे स्विच ऑफ किया गया। बुझी हुई बत्ती मानो कह रही थी मिशन एकम्प्लिश्ड। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विजय कुमार की पुस्तक वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगांड, चंदन तस्कर वीरप्पन के उदय और अंत की कहानी रेहान फजल आपको सुना रहे थे। और ये कहानी आप सुबह नमस्कार भारत में भी सुन सकेंगे। एक स्कोर बता दूं आपको, पुणे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम 105 रन बनाकर पवेलियन लौट गई है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 64 रन लोकेश राहुल ने बनाए और भारत की ओर से केवल 3 बल्लेबाज ही दहाई का अंक पार कर पाए। तो ये थी आज जो मैच चल रहा था उसका स्कोर कार्ड। bbcsindhi.com पर इस समय की जो शीर्ष खबर है वो है कि माया का मुस्लिम प्रेम क्या बनेगा सत्ता का चाबी। इस यदि आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं, विश्लेषण को पढ़ना चाहते हैं, तो bbcsindhi.com की इस समय शीर्ष खबर है। इसे पढ़ने के लिए जरूर हमारे पेज पर आएं। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया एजेंसी FBI की एक बार फिर आलोचना की है। ट्रंप का कहना है कि FBI गोपनीय जानकारी लीक होने से रोकने में नाकाम रही है, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है। मलेशिया में पुलिस का कहना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की क्वालालंपुर में हत्या में एक बेहद जहरीले रसायन का इस्तेमाल किया गया था। सीरिया में अलबाब कस्बे के नज़दीक एक आत्मघाती हमले में लगभग 60 लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो दूसरी सभा दिन भर के संक में इतना ही। देवाशीष के साथ मोहनलाल शर्मा को विदा दी। तब तक सब तक सवेरे नमस्कार भारत में मुलाकात होगी। विदा।